नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए सहयोगी, नवोन्मेषी और सतत रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन के दौरान श्री शाह छत्तीसगढ़ के सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर पहल के अंतर्गत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफएस के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसमें पिछले 11 वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुलकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं होने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग ईपीएफओ के दायरे से बाहर रह गया है। ईपीएफएस एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रतिमाह 15,000 रुपए की वेतन सीमा मनमानी और तर्कहीन है और विशेषज्ञ निकायों तथा संसदीय समितियों की बार बार की सिफारिशों के बावजूद इसका मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
निर्वाचन आयोग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि दावेदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि आज से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस नोटिस चरण के दौरान 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पिछले वर्ष 30 दिसंबर को मतदान पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले के संबंध में आज शाम 5 बजे तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सी मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य करते समय हमला हुआ था। बांग्लादेश में झेनाईदा जिले के कालीगंज इलाके में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दावा किया है कि उसके बाल काटे गए और दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। इस संबंध में कल कालीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में 45 वर्षीय हसन नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हैं। इसके कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 70 से अधिक रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में और अगले 2 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।